సచీపుత్రమత్తస్వరూపమతస్యాగ్రజవరిపరిమాధురీం గోష్ఠవాటిం రాధాకుండం గిరివరమహో రాధికామాధవాసం ప్రాప్తో యస్య ప్రసిద్ధికృపయా శ్రీగురుం తన్నతోస్తు వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనిభ్యో వైష్ణవిభ్యో నమో నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమ్నే గౌరక్తిశే నమః భక్త్యా విహీనా పరాధలక్ష్యై క్షిప్తాస్య కామాది తరంగమధ్యే కృపామయీ త్వాం శరణం ప్రపన్న వందే నమస్తే చరణాయ యం ప్రభ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతరయా జుహావ పుత్రేతి తన్మేతయా తర్వోభినేదో తం సర్వభూతహృదయం మహిమాన్. భాగవతం आज हम लोग दशम स्कंध से कुछ प्रवचन करेंगे. यद्यपि भगवान की लीलाएं मनुष्यों जैसी लगती हैं, किंतु मनुष्यों की लीला जैसी नहीं है. भगवान का शरीर भी दिखता है हम लोगों जैसे, इसलिए कंस, दुर्योधन इत्यादि, रावण, उनके शरीर को मॉर्टल समझ लिया. गीता में भी ऐसा बतलाया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो वेति तत्वतः. भगवान का जन्म और कर्म हम लोगों जैसा नहीं है. भगवान ने जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का यदि चिंतन किया जाए, मनी मन स्मरण किया जाए और उनका नाम कीर्तन किया जाए, तो ये लीला कथाएं हृदय पटल में या मन में उदित होकर के जन्म जन्मांतर के पाप राशि को दूर कर और हृदय को निर्बल बनाकर नित्य भगवत धाम में लेकर चली जाती है. कृष्ण प्रकट हुए, गोकुल में वसुदेव जी ले आए. वहां से एक लड़की जो पैदा हुई थी उसे अपनी गोदी में लेकर मथुरा जेल खाने में कंस कारागार में लौटे. वहां आते ही कवाट बंद हो गए, उनकी हथकड़ी और बेड़ियां दोनों लग गईं दोनों की, और जेलखाना जैसे था वैसे हो गया. और पहरेदार जो सो गए थे अब उठ गए, और लड़की के रोने की आवाज सुन करके झट कंस को कहा. कंस पहले से प्रस्तुत था, सुनते ही एकदम दौड़े हुए आया और देवकी के हाथों से उस लड़की को छीन लिया और उसको पत्थर पर पटकना चाहा. यही पटकना चाहा, उसके हाथ से निकल गई और अपने पैरों के ठोकर से इसको यहां थोड़ा सा स्पर्श करने से ही मालूम है वो गिर जाएगा. और उन्होंने अष्टभुजा दुर्गा जी का रूप धारण किया जो उधर में है, और आकाश में एक सिंह दिखा, उसके ऊपर में बैठी हुई वो कह रही है, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला दूसरी जगह प्रकट हो गया. बड़ा बेचैन हो गया. उन्होंने कहा ये तो हमारी घर की देवता हैं, देवी हैं, इनकी पूजा मैं रोज करता हूं, तो ये झूठ नहीं कहेंगे. और इसके बाद में अंतर ध्यान हो गई और वहां से लौटा. ये देवता लोग धोखा देते हैं. प्रकट हो गया, अपने अनुचरों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और बैठक हुई उसमें सभा में। ये उसने कहा कि कहीं हमारा मारने वाला प्रकट हो गया है, अब उसको जल्दी से पता लगाना है। एक बात करो, ये विष्णु यदि प्रकट है तो दिखाई तो पड़ता नहीं शाहजी, यज्ञ में वो कभी कभी प्रकट होता है और यज्ञ में जो कुछ दिया जाता है उसी को वो खाता है और इसीलिए पुष्ट होता है। इसलिए जितनी गायें हैं जो घी दूध देती हैं उनको मारो और हरे पेड़ों को काट दो फलदार को, और जितने तत्व जानने वाले अच्छे सदाचार साधु संत, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, जो यज्ञ इत्यादि कराते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, जो अच्छे चरित्र के, सबको काट करके खत्म कर दो। और उस लड़के का पता लगाया जाए ये कहां पर वो जन्म लिया है। उनके जो अनुचर थे बड़े बड़े योग जानने वाले थे, रूप बदल करके हवा का रूप धारण कर लेंगे, जो चाहेंगे वही कर लेंगे, आकाश में उड़ जाएंगे, सब कुछ करने वाले जानने वाले, सब सिद्धियां उनकी हाथों में, इतने तपस्वी से तपस्या से मंत्र से जान करके कर लिया। अभी हम लोग जो मैटर से करते हैं वो लोग मंत्र के द्वारा सिद्धि कर देते हैं, जिसको कहते हैं शब्द ब्रह्म, इतना ताकत है उसमें हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी किसी को अपने बातों से हम हंसा सकते हैं, रुला भी सकते हैं। अभी दो चार गाली दे दें आपके बाप और माँ की तो आप बिगड़ जाएंगे, और उनकी प्रशंसा कर दें आपकी प्रहत आप हंसने लगेंगे, तो मंत्र में कितनी शक्ति होगी। कुछ दिन उसका अभ्यास करने से आदमी जो इच्छा करेगा वही कर सकता है, यहां तक कि भगवान को जो दिखते नहीं उसको भी देख लेगा। हम समझते हैं कि पहले हम भारतवर्ष में जब थे बच्चे सोचते थे हमारे गांव के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, जब गांव से बाहर देखा तो जैसे हो तो बंबई और कलकत्ते दिल और ये सब बड़े बड़े शहर हैं। और जब कुछ ज्ञान का विकास हुआ, जब ज्योग्राफी इत्यादि इतिहास पढ़ने लग गए, ओ ये तो पूरी पृथ्वी में कितने देश क्या है, भारतवर्ष तो उसके सामने नगण्य है। अब हम लोग जब और जो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये पृथ्वी नगण्य है, सूर्य लोक इत्यादि इससे कोटि गुण बड़े हैं, जितने ग्रह नक्षत्र हैं उसमें पृथ्वी छोटी है, कितने ग्रह नक्षत्र हैं, कोटि कोटि सूर्य हैं, एक तो नहीं आकाश में जो बहुत दूर तक तारे दिखते हैं, बहुत छोटे झिलमिल करते हैं जिनकी रोशनी अभी तक नहीं आई। साइंस बहुत पीछे है, आज का आधुनिक साइंस, साइंस का नाम विज्ञान है, विज्ञान मैंने कहा विशेष ज्ञान। पृथ्वी से चंद्रलोक तो हम लोग जाने की चेष्टा कर रहे हैं, बृहस्पति लोग और शुक्र में जाने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु यहीं पर एक आत्मा है निकट ही, उसको वहां तक जाने के लिए कोई प्लान कुछ नहीं बना। ये आत्मा क्या है, मन को ही नहीं रियलाइज कर रहे हैं ये मन क्या चीज है, तो आत्मा क्या चीज, और उसके बाद में परमात्मा क्या चीज है, ये तो बहुत दूर की बात है, किंतु मंत्र के माध्यम इसको रियलाइज किया जा सकता है। व्यास सूक और हमारे ऋषियों ने इसका रियलाइजेशन किया था, हम लोग भी रियलाइजेशन करने की तरफ में चल रहे हैं। यदि हमारी गति ऐसी ठीक रही और जिस पथ पर चल रहे हैं तो निश्चित आशा है कि हम लोग भी उसको रियलाइजेशन कर लें। कुछ कुछ अनुभूति अभी भी होती है, आप लोग भी अंत कुछ भी नहीं हो महामंत्र को कीजिए कुछ दिनों तक, जिस प्रकार से विधिवत नियम है, देखेंगे आप लोग स्वयं अपनी आत्मा का रियलाइजेशन करेंगे। तो बड़े बड़े वो लोग जो उनके जो परिकर्ते मंत्री और ये सब अघासुर बकासुर आदमी तो था किंतु वो कभी बकासुर बक का रूप धारण कर लेता, अपना काम हाजिर कर लेता, कोई सांप बन जाता, कोई बैंक बन जाता, कोई निराकार बन जाते, आकाश में उड़ जाते। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहलवान लोग थे, वो सब लोगों ने विचार किया। पहले ये बहन को भेजा जाए, पुतना को। पुतना मैंने क्या, उनका नाम ही ऐसा देखिए, पूत नहीं, पूतना जो पवित्र नहीं है, सब समय अपवित्र है, जो अपवित्र है, जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है, कैसे होगा? मन में जितनी बुराइयां हैं लोगों के प्रति, किसी का क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, लोगों की बुराई को देखना, किसी से हिंसा करना, विद्वेष करना, मैत्री और प्रेम न हो, ये सब चीजें हैं, ये हृदय का मैल, ये है अपवित्र। 10 वर्ष नाम करो और भीतर में हृदय तुम्हारा मैला नहीं है, पड़ोसी को देकर के जलते हो, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते, अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर सकते, भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, वो हृदय अपवित्र है, उसमें हिंसा रहेगी, गंदी गंदी चीजें खाएंगे और पवित्र बन जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। कहेंगे ये तो फल है, तो फल तो ऐसी चीजें हैं जो खाइए तो मर जाएंगे, इसलिए अपवित्र चीज जो हृदय में तामसिक भावों को भरता है, ऐसी चीजों को न खाया जाए, नहीं तो पीछे से वही, उसी से बुद्धि बनेगी, वैसे ही दुर्बुद्धि होगी। इसलिए जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। हुआ क्या करती थी, क्या पूतना? बाल, घातिनी, राक्षसी और रुधिरासना, रुधिर पीने वाली, छोटे छोटे बच्चों को, कोमल बच्चों को, जैसे कि लोग मुर्गी के बच्चों को, अरे एकदम छोटे छोटे हैं, उसी को काट करके नमक और मिर्च दे करके बस समझते हैं कि ये खाने के लिए है। छोटे छोटे बच्चों को, कोमल शिशु अभी आजकल के उत्पन्न हुए हैं, 2 दिन के 4 दिन के, झट उनको पकड़ करके उनका रक्तपान करके उसे खा जाती रुधिर आसना। अब बड़ी राक्षसी, राक्षस इसी को कहते हैं, मनुष्य का शकल होने से क्या होगा, और वो खोज करती थी, इधर उधर गई और गोकुल में पहुंची, और पहुंच करके सुना जैसे नंद बाबा के घर में एक लड़का उत्पन्न भी कल ही हुआ है, परसों मध्यक वहां पर पहुंच गई, देखा जो बड़ा सुंदर सोलोना सा पुत्र है, गोदी में लिया, पहले से ही अपने स्तन में कालकूट बीष भर करके आई, जब निकट पहुंची लाला लाला कहने लगी, बड़ी दुलार और प्रेम दिखलाने लग गई और गोदी में उठा लिया। वहां पर ये मैया जसोदा जी और रुक्मिणी जी वहां थी, तो देख करके बोली इतनी सुंदरी, मैं इस बच्चे की मां नहीं बल्कि ये मैया है, इतना स्नेह कर रही है, कुछ कुछ नहीं समझ रही, झट उठा करके और गोदी में लेकर के मुख दे दिया। दूता उसके स्तन में था नहीं, जिस स्त्री को बच्चे पैदा नहीं हो तो स्तन में दूध कहां से आएगा, इसलिए पहले से ही अपने स्तनों में कालकूट बीष भर करके लाई, पकड़ करके या बच्चे का एक हाथ से पकड़ करके और पंप किया जैसे भीतर उसके मुख में चला जाए। कृष्ण ने कहा जो तुमको इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा, बीष तो बीष, साथ साथ प्राण भी उसके खींच लिए, अब तो छटपट करने लगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 60,000 हाथियों के बल वाली थी और जादू विद्या सब कुछ जानने वाली निशाचरी, आकाश में उड़ने वाली, जोग से अपने देश को परिवर्तन करने वाली, किंतु उसका एक बस भी नहीं चला, भूल गई जादू मंत्र और एक विराट राक्षसी हो गई। 6 मील की 6 कोस एकदम लंबी हो गई, जहां उसका हाथ गिरा उस स्थान का नाम हथरस हो गया, अभी भी हथरस मथुरा के इधर में है, गोकुल के बगल में है, जहां सिर गिरा उसका वैसे ही नाम है, मूर्शान, मूर जहां पर गिरा वो मूर्शान, अभी भी वो प्लेस 5,000 वर्षों का है, जहां पर तैर गिरा वैसे उसका उसका सभी उसके नाम अभी तक है। उड़ करके चली भैया कंस के पास में चले, वो यदि इसको छुड़ा दे, बहुत छुड़ाने की छोड़ो छोड़ो चेष्टा की, किंतु नहीं छोड़ सके। आज यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण यहाँ पर तो चेष्टा नहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे स्तन पकड़े हुए खेल करके खेलते हुए जैसे यहाँ पर है, कोई चेष्टा नहीं की। आज यशोदा मैया के यहाँ अपने मुख से तो पकड़ ही लिया जोर से, हाथों से पकड़ लिया, बैस जकड़ लिए, अजो समय बैस यहाँ बस वहां पर बैठ गए, कोई जोर काम नहीं किया। और यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो भी छुड़ा नहीं सकी, अंत में उसके प्राण दे दिए, आकाश में उड़ी, बीच में कंस का बगीचा था वो चूरमार होकर के गिर समाप्त हो गया। कोई खबर देने वाला भी नहीं रहा कंस को। इसी तरह से जो जो लोग आए, कोई देखा जी से रूप धारण करके गई, अब रूप धारण करेंगे नहीं, हवा बन करके चलेंगे और गाड़ी में प्रवेश कर जाएंगे और उसको दबा करके मार डालेंगे। कोई आकाश में हवा बन करके उड़ गया और उसको मारना चाहे, इसी प्रकार से मारने की बहुत चेष्टा की गई, कुछ भी नहीं कर सके। जो आए वहां से लौटे नहीं। मारा मैंने तब कृष्ण के अंदर में हिंसा की प्रवृत्ति है तब मारा, नहीं शत्रु भाव से नहीं, उनकी गति दे दीजिए। बड़े बड़े महात्मा लोग लाखों कोटि वर्ष तक मन को कंट्रोल करके और हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं ऐसा करते हैं, हवा भी पीना नहीं पीते हैं, हवा भी नहीं लेते, खाना पीना छोड़ देते हैं। उनकी ये गति जो होती है इसको अपने हाथों से मारा भी नहीं, यदि मर गई तो क्या करेंगे, उन्होंने तो केवल चूसा और मर गई। उसको माता की गति दे दी, किसी को कुछ साइज की गति दी, किसी को और किसकी गति दे दी, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए, ऋषियों के लिए, शंकराचार्य जैसे लोगों के लिए उस रीति से जो उपासना करते हैं उन लोगों को भी ये गति नहीं मिलती और सहज ही में दे दी। इसलिए भगवान में मिल जाना ये जो गति साइज इत्यादि कहलाती है, या लोग जो मुक्ति के लिए पागल कुछ लोग हुए रहते हैं, ये कैसी गति है, आस्तुरिक गति है। इसको भगवान जिनको मारते हैं उनको हतारी गतिदायक उनको दे देते हैं। इसलिए कभी आप लोग मुक्ति की तरफ में मत जाइएगा, भक्ति की तरफ में जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम होश, भगवान की हम सेवा करेंगे ऐसी भावना लेकर के चलेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे। कुछ नहीं है, एक पुष्प लेकर के, यदि ठाकुर जी नहीं है तो भी ठाकुर की कल्पना करके कृष्णाय नमः अर्पण कर दें, बस इतने से ही काम चल जाएगा। एक बार यदि कृष्ण नाम मुख से निकल गया मैं तुम्हारा हूं, तो कृष्ण उसके वंश के हाथ में बिक जाते हैं, और ऐसी कितनी उदाहरण सब है। इसके बाद में कृष्ण अब बड़े हो रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, मालूम ये साधारण जैसे संसारी बच्चे होते हैं वैसा ही कर रहे हैं। कल हमने बतलाया था ये मुख में ब्रह्मांड दिखला दिया, तभी जो यशोदा मैया ने उनको पर ब्रह्म नहीं माना, इसको जादू लग गया, टूना लग गया, क्या हो गया। और अर्जुन को थोड़ा सा रथ पर बैठ करके विश्व रूप दिखलाया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, उनके चरणों में गिर गए, प्रभु अब मैं आपको अपना सखा नहीं कहूंगा, आप मेरे सखा नहीं है, आप हमारी जगत के प्रभु हैं, समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। हाथ जोड़ करके वंदना करने लगे, देवकी वसुदेव को दिखलाया, वो भी वंदना करने लगे। इनके घर में प्रकट हुए महाराज दशरथ के घर में, कौशल्या जी के यहां, वहां पर जब थोड़ा सा रूप दिखलाया, शंख चक्र गदा पद्म दिखलाया, जन्म के समय में हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति, कल उन्होंने दिखलाया ना वो क्या, हाँ वो कौन सा, हाँ श्री रामचंद्र भाजुमन, उसमें भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें हाथ जोड़ करके स्तुति माता जी करने लगी, तुम हमारे बेटे नहीं हो, यशोदा का ऐसा नहीं है, सब समय अपना पुत्र मान करके सेवा करती हैं। अब कृष्ण जब थोड़े से बड़े हो गए होने के बाद ना, अब डेढ़ दो वर्ष के हो गए, बहुत सी हम छोड़ रहे हैं उनकी लीलाओं को, एक स्पेशल लीला का वर्णन करूंगा। अब अपने दरवाजे को चौकट को लांघ कर बलदेव के साथ में अब बाहर भी जाने लगे हैं। नंगे धड़ंगे हो करके पास पड़ोसियों के घरों में पहुंच जाते हैं, उनके घर में जो मक्खन रखा है, मक्खन के बड़े लोभी, बस झट चुरा लेते हैं खाकर। एक गोपी ने उनको एक दिन पकड़ लिया, चुरा करके क्यों खाते हो, हमारे घर में तुम्हारे लिए सब रखा है, उनको चुरा करके खाने में ही अच्छा लगता है। किस लिए? उनके चित्त को बरबस हम खींच करके अपने में लगा दें, कमी नहीं है का, जैसे तुम मांग लो। मैंने समझा था कि ये तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है। आज मैं सोचा कि तू मेरी मैया नहीं है, ये तेरा घर है। मैं तो समझता तू मेरी मैया है, ये मेरा ही घर है। ऐसे कह देते, मुस्कुरा देते, उस पर लट्टू हो जाती। एक दिन किसी घर में पहुंचे, वो पहले से प्रस्तुत थी, जो आ रहा है माखन चोर, घर में घुस गए और हड़िया में जो ही हाथ लगाया तो ही पीछे से आकर के पकड़ लिया उसको। ये क्या कर रहा है? साथ ही साथ उत्तर देता है, मेरा वो बछड़ा था ना, वो बछड़ा इसमें कूद गया, मैं उसको पकड़ने के लिए मैं हाथ डाला। तुम्हारा बछड़ा कैसे कूद गया? तो अच्छा देखो, हाथ लगा करके उसमें खोजा, मार्बल पत्थर का एक खिलौना बछड़ा नंद बाबा ने दिया था, देखा जैसे उसमें से निकाल, देखो हमारा बछड़ा कूद गया। वो हंसने लगी और इतने में हाथ छुड़ा करके भाग गया। देखने में ये साधारण सी लीलाएं हैं, किंतु जिस घर में जाता है उनका चित्त चोरी कर लेता है। अब उनका घर में मन नहीं लगता उन माताओं का, वो प्रार्थना करते हैं ये प्रभु हमारे घर में ये बच्चा है। एक दिन हाथ डाल दिया अपना और इतने में एक ग्वालिन ने पकड़ लिया, ये क्या कर रहा? ओ मैया, मेरे हाथ में कुछ जलन हो रही थी। कैसे? मेरी मैया ने कुछ हीरे का अलंकार लगा दिया, उसे हाथ में जलन हो रही थी और खुजलाहट हो रही थी, इसलिए दही में ठंडा होने के लिए मक्खन में मैंने हाथ डाल दिया। तो तुम्हारे मुख में कैसे लग गया? तो मुख में ऐसे लगाया कि बंदरों ने देखा और झट हमारा हाथ से वो मक्खन निकाल करके खाने का, तो हमारे मुख में भी लगा दिया। अच्छा, ऐसे ऐसे सबका मनोरंजन करते हैं। किसी के घर में एक दिन पहुंचे, उसने उनको पकड़ लिया भोर में, थोड़ा थोड़ा अंधकार, और वो आज तेरी मैया को दिखला, तुम्हारी मैया विश्वास नहीं करती, आज मैं जाऊंगी तुम्हें पकड़ करके ले जाऊंगी। बस उनको झट गोदी में उठा करके और ढक करके ले गई, वहां पर जाकर के उतारा। अरे जसोदा सखी, सही सही सही, इधर आओ, देखो तुम्हारे लड़के की करतूत मैं कहती है तू विश्वास नहीं करती, आज मैंने रंगों हाथ इसको पकड़ लिया। कहा है? अरे मेरा बेटा तो सो रहा है, जब वो ले आई, जब उसका मुंह खुला तो देखा जो लाई है उसी का लड़का है, अपने बेटे को। अरे ये तो मेरा तो बेटा सो रहा है। इतने में कृष्ण करते हुए, मैया देखो रोज ऐसे ही झूठ हमको लगा। एक समय जसोदा जी उनको डांट रही हैं, तू रोज रोज लोगों को तंग करता है, उनके घरों में जाता है, ऐसा क्यों करता है? तुम्हारे घर में जितना मक्खन है, मिश्री है, सब कुछ तुम्हारे घर में, और तुम जाता है। आज तुम्हें बांधूंगी और तुमको दंड दूंगी। आज उन्होंने सदैव ही जसोदा के घर में ही मक्खन लेकर के थोड़ा सा चुरा करके खाया। भैया कि आज तुझे मैं दंड दूंगी, आज जरूर मारूंगी। कृष्ण ने कहा जी क्यों? तो तुमने मक्खन खाया? मैया मैं नहीं, माखन खाए हो। मैंने कब मैंने मक्खन खाया? मैया मैंने मैं मक्खन नहीं किया, मुझे मारो, मुझे मत मार। भोर भयो गौवन की ये पाछे, मधुबन मोही पठायो, जहां भोर हुई गए और मुझे मधुबन में भेज दिया गैयों के पीछे पीछे, और मैं गैयों के पीछे पीछे भगता रहा सारा दिन, और शाम जब हुई तो मैं घर लौटा। मैंने कम मक्खन खाया, तो नहीं तूने मक्खन खाया, तय नहीं मैं माखन खाया, जरूर तुमने मक्खन खाया। मेरी बात नहीं मानती है मैया, मालूम होता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं दूसरे का बेटा हूं, तुम हमारा पालन पोषण कर रही है, और इसलिए मैंने दोष नहीं किया, मुझे झूठे इल्जाम लगा रही है, तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो मैं अब जा रहा हूं दूसरी जगह, जिसका बेटा हूं उसके पास नहीं, तो इधर धर चला जाऊंगा। इतने सुनते ही यशोदा जी का हृदय द्रवित हो गया। अब वो क्या कह रही है, तुमने मक्खन नहीं खायो, तैने माखन नहीं माखन खायो, और कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खा, मैंने ही माखन खाया, और कह नहीं नहीं तेरे तैने, और गोदी में लेकर के और उसको दूध पिलाने लग गई। यशोदा जी ने सोचा कि आज से मैं कभी नहीं कहूंगी, ये सब लाड़ प्यार है, क्यों ऐसा होता है, प्रेम एक ऐसी चीज है उसकी रिन्यूअल की जरूरत होती है। जब यशोदा जी को पुत्र हुआ तो बड़ी आनंदित हो गई, अपने कुछ दिनों के बाद में अपने घरों के कामों में लगने लगी, उसके लिए इधर उधर उधर सब काम कर रही है। कृष्ण देखा जी मेरी मैया मेरी उपेक्षा कर रही, पहले जैसा सब समय चौबीसों घंटा गोदी में नहीं, इतने में पूतना आ गई, और पूतना के जब हाथों में चला गया और मरने से बच गया, यशोदा जी का प्रेम रिन्यूअल होकर के अब इसको ऐसा नहीं छोड़े। पति और पत्नी एक जगह है जहां दो बर्तन होते हैं, वहां बर्तन तो कुछ कुछ लगेंगे ही, ठकमक करेंगे, तो जिस परिवार में कभी कभी ठकमक नहीं हो जाती स्त्री और पत्नी में और एक ही समान चलता है, तो वो प्रेम शिथिल हो जाता है, और यदि कभी पत्नी थोड़ी सी रूठ गई, आज रसोई ही नहीं बनाऊंगी, या रसोई बनाकर के आज भोजन के लिए नहीं बुलाया, या भोजन उनको करा दिया किंतु अपने आज भोजन नहीं किया, न बातचीत कर रही है, कुछ बात करते हैं, तो आप देख लीजिए पैसा इधर से, बातचीत करने चले पर नहीं करे, अब उनका माथा ठनका, जे कुछ बात हुई, मैंने भाई इसलिए तो थोड़े कहा था, मैं यदि गलती किया हो तो तुमने क्षमा कर देना, कुछ ऐसे ऐसे होने के बाद में तो फिर किसी तरह से फिर सुलह हो गया, अब वो प्रेम रिन्यू हो गया। कृष्ण भी ऐसा करते थे जानबूझ करके। रुक्मिणी जी की शादी होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में, एक दो वर्ष के बाद में, एक दिन कृष्ण रुक्मिणी के घर में थे, पलंग पर बैठे थे, रुक्मिणी जी ने अपने दासियों को हटा करके अपने हाथों से उनको चमर व्यजन आरंभ कर दिया, खड़ी हो गई पलंग से नीचे, और बड़े प्रेम के साथ में उनको झलने लगी। कृष्ण थोड़े से आज गंभीर हैं, और गंभीर होकर के बोले, देवी जी मुझे क्षमा करना, मैं अपनी करनी पर पछता रहा हूं, तुम रुक्मिणी महाराज की लड़की, समस्त गुणों से भरपूर और बड़ी सुंदरी हो, और मैं कैसा हूं, काला हूं, मेरे अंदर में कोई गुण नहीं है, मैं निर्गुण हूं, तुमको भारतवर्ष के या विश्व के बड़े बड़े राजाओं के सुंदर से सुंदर लड़के तुमको चाहते हैं, तुमसे शादी करना और तुमसे प्रेम करना चाहते हैं, और मुझसे गरीब ही केवल दरिद्र गरीब हो, जिसको कष्ट हो वही हमसे स्नेह करता, दूसरा कोई स्नेह नहीं करता, धनी लोग नहीं करेंगे, गरीब लोग हमसे, और यदि ये भी डरते हैं कि यदि उससे प्रेम करेंगे तो क्या होगा, रास्ते का फकीर बन जाएंगे कृष्ण का भजन करने से। हरि से तद धर्म शनि संसारिक अर्थों को संपत्तियों को हरण कर लेगा, उसे कहीं कहीं नहीं रखेगा और तभी भक्ति रहेगी। तो उस सर्वस्व आत्मज्ञान भक्ति सब कुछ दे करके ये संसार से हटा करके अपने धाम में ले जाएगा। इसलिए ऐसा जब तक संसार की आसक्ति रहेगी तब तक भक्ति नहीं पूर्ण होगी और तब तक प्रेम नहीं होगा तब तक अपने वो कृपा नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा जानबूझ करके ऑपरेशन के द्वारा ऐसा करते हैं, किंतु साधारण लोग समझ नहीं पाते। रुक्मणी सुन रही थी और बोले देखो मैं एक सामंत साधारण आदमी का लड़का हूं और तुम महाराजा धीराज की लड़की हो, इसलिए मैंने गलती की, ये तुम्हारे साथ में मैंने शादी कर ली और तुमने भी गलती की। अब आप अतलाइए, आप जिसके पास में जाना चाहती हैं, जिससे शादी और पुनः कर लेना चाहती हैं, जिसके साथ में रहना चाहती हैं, परे परे नरेश के लड़के अभी भी आपसे शादी करना चाहते हैं, आप जिसको कहिए मैं आपको वहां पर पहुंचा दूं अपने रथ पर बैठा कर और मुझे क्षमा कीजिए। इतने सुनते ही उनका श्वास बंद हो गया और जमीन पर गिर पड़ी, हाथ से चमर गिर गया और एकदम जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। कृष्ण देखा ये तो गड़बड़ हुआ, उन्होंने देखा जैसे ये जीवित है या मर गई। देखा जी बहुत धीरे धीरे श्वास चल रहा है, सब दांत लग गया, एकदम मूर्छित हो गई। कृष्ण ने कान में कहना आरंभ किया, प्रिय तुम हमारे हृदय की हृदयेश्वरी हो, हमारी प्रियतमा हो। मैंने तो थोड़ी सी दिलगी की थी मन लगने के लिए, घर गृहस्थी में रहने से एक समान अच्छा नहीं लगता वो। मैंने ब्रज में जब मैं था तो उन गोपियों से ऐसे ही होती थी, मैं कहता था कुछ और उसका उत्तर देती, अरे काले तुम यही इस कुंज से निकल करके चले जाओ। वो तो ऐसा उत्तर देती थी जो हमको उत्तर से कायल कर देती थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मन लग जाएगा, दिलगी हो जाएगी, इसलिए मैंने तुमसे देखा जैसे तू रूठ करके और जरा इस तरह से हो करके हमसे कुछ रूठ जाएगी और रूठ करके क्रोधित होकर के कुछ कहेगी। वो सुनने के लिए मैं कर रहा था, थोड़े में ये बात कर रहा था जो तुमको मैं ले जाऊंगा दूसरी जगह, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, कभी संभव नहीं है। यदि पानी तरलता छोड़ दे, आग अपनी दायिका शक्ति भी छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। और कानों में कुछ जोर से कहने लगे, धीरे धीरे श्वास लौटा। तो इस तरह से कुछ थक थकाहट गृहस्थ में नहीं होने से, यही तो संसार का मधु है। कभी बच्चा गोदी में आएगा, कभी उसे लाड़ प्यार करेंगे, कभी डांट देंगे कभी, और फिर उसे प्यार लाड़ करेंगे पत्नी से ही ऐसे। तो मैं किसके तो कृष्ण रिन्यूअल करने के लिए अपने भक्तों का प्रेम ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। कभी कभी अंतर ध्यान भी हो जाते हैं, रास में अंतर ध्यान हो गए अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसलिए ऐसी ऐसी लीलाएं ये सब करते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ में चले जाते सब नंगे सनक सनंदन जैसे, अभी तो केवल 3 वर्ष के या 3.5 वर्ष के या 2.5 वर्ष के या 3 वर्ष के हमारे बच्चे हैं, सब एक साथ में 8, 10, 20, 25 चले जाते और जिसका घर है कृष्ण उसी के बच्चे को उसकी मैया के पास में भेज देते, मैया से जाकर के कह देना अभी तुरंत, अरे मैया बछड़ा खुल गया है दूध पी रहा है, और बछड़े को खुलवा दिया और बछड़ा दूध पी रहा है और उसी का बच्चा, और मैया बछड़ा दूध पी रहा है, वो जहां उधर से गई उधर से और पिछले दरवाजे से ये घुस करके जितना मक्खन और सब ले लेते। यशोदा जी ने सोचा कुछ कारण है इसका, कारण यह है कि हमारे घर का मक्खन अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं आज अपने हाथ से दूध दूंगी अच्छी अच्छी गायों का और अपने हाथ से उसे गर्म करूंगी, दही बनाऊंगी और अपने हाथों से आज मक्खन निकालूंगी और तब देखता हूं कि देखती हूं कि वो लेता है कि नहीं, खाता है कि नहीं, फिर उसकी चोरी छूट जाएगी। इसलिए आज दीपावली के दिन दूध को दूह करके पद्म गंधा इत्यादि गायों का जिसका सुगंध निकलता है दूधों में से, और उसको अपने हाथों से जमाया। दासियों को कह दिया जाओ अपने अपने घरों में दीपावली करने के लिए, और रोहिणी को भी दूसरी जगह में भेज दिया एक जगह, आज मैं अकेली रहूंगी दूंगा, नहीं तो यदि वो लोग रहेंगे तो हमारे हाथ से ये ले लेंगे और मथने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। सबको भेज दिया और अपने आप सवेरे में भोर में वो एक खंभे में रस्सी लगा करके और इस प्रकार से मथने लगे। उस समय में उनका स्वर कितना सुंदर था, यदि मैया का स्वर ठीक नहीं रहे ना तो बेटे का भी स्वर ठीक नहीं हो सकता, मैया के घूम सब उसमें आते हैं। मैया सुंदरी नहीं रहती तो कृष्ण कितने सुंदर कैसे होते, ये संभव पर नहीं था, इसलिए परम सुंदरी हैं और उनका स्वर बहुत मीठा है, और वो आंख को बंद किए हुए और इस प्रकार से घर 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 कर रही हैं। ये पसीने की बूंदे मानो मोतियां ऊपर से गिर रही हैं, पसीने के बूंदे। और मृदंग में पिछला जो होता है धिक धिक और इधर में तान, और देख देख क्या जो दधि मंथन से यह आवाज उठ रही है, और हाथों में चूड़ियां हैं सोने की, वो करताल का काम झन झन मधुर स्वर से करताल जैसी आवाज दे रही है। और वो कहे गोविंद दामो उदर माधवेती, गोविंद रामो धर्माधवेति, गोविंद रामो धर्माधवेति। कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करती हुई और तन्मय होकर के कीर्तन में लग गई। उद्दुखलेशं घंटतांडुलांश संघंटयन्तो मुसलै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद दामो। इस प्रकार से सुंदर रेशम की साड़ी मानो उनका सौंदर्य कपड़े से छन छन करके बाहर आ रहा है। अग्रभाग बहुत स्थूल, कमर पतली सी, आंखें बड़ी बड़ी, भौहें बड़ी सुंदर कृष्ण जैसी, इस प्रकार से तन्मय हो रही हैं। और इधर कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पलंग पर मैया 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 कर रहे हैं, मैया को इधर उधर टटोला नहीं मिली तो वो कुछ उठ करके इधर उधर देख रहे हैं, देखा जी मैया तो नहीं, कहां गई मैया, बड़ी भूख लग गई है। देखा जी बहुत दूर पर दधि मंथन कर रही है, जोर से रोना आरंभ किया और हाथों को इस प्रकार से दोनों आंखों से ऐसे ऐसे करने लगे, आंखों से थोड़ा सा पानी निकल रहा है अश्रु, और हाथों से मिलकर के और ऐसे मानो गंगा और यमुना जी एक धारा होकर के चल रही, मुख जो काजल था वो काजल और अश्रु मिलकर के एक तो काला एक तो नीला, करला तो ऐसे ही पीता और नीम के ऊपर में बेल उसकी चली गई तो और करेला, तो एक तो श्याम वर्ण ही है और उसमें और काला मिल करके सब मुख काला हो गया, और धुल धुल करके छन छन करके गंगा और जमुना, गंगा मने सफेद और जमुना का पानी नीला काला दोनों मिल करके बह रहे हैं। किसी प्रकार से वहां से उठे, सारे विश्व ब्रह्मांड को अपनी आकर्षण शक्ति से खींच करके रखने वाले ब्रह्मांड को भी कौन रखना रखता है, कृष्ण के अंश के अंश के कला के विकला ये कौन है शेष, जो सारे विश्व को धारण करते हैं अपने आकर्षण शक्ति से। ये सब खींचे हुए कुछ दिन वैज्ञानिक लोग पीछे जब देखेंगे कि ये कैसे टंगे हुए हैं आकाश में, तो देखेंगे जैसे कोई शक्ति जरूर है। वो शक्ति क्या है? ये संकर्षण है, आकर्षण से। ये संकर्षण कौन है? कृष्ण के अंश के अंश के कला के विकला के क्या है वो, तो उस कृष्ण की तो बात क्या है। इसलिए उनका नाम है कृष्ण, आकर्षण से कृष्ण। इसलिए क्या कर रहा था, भूल जाता हूं। आंखों से बह रही है और उतरे। इतने विश्व का सृष्टि करने वाले प्रलय करने वाले के भी ईश्वरों के ईश्वर और पलंग से उतर नहीं पा रहे, उनका पैर नीचे नहीं जा रहा, पेट के बल से किसी प्रकार से पकड़ करके बड़ी चेष्टा से किसी प्रकार से उतरे और वहीं से जोर से आरंभ किया रोना। मैया सुन नहीं गई, मैया तो तन्मय है। गोविंद दामो धर्मा धवेशी, गोविंद दामो धर्मा धवेशी, इधर में वो बज रहा, ये चल रहा है, इसलिए सुन नहीं रही और आगे बढ़े। जितने आगे बढ़े उतनी रोने की आवाज और बढ़ती चली जा रही है। अंत में जति नहीं हुआ, एकदम निकट पहुंचे और मथनी को पकड़ लिया और एक हाथ से यशोदा मैया का यहाँ पर मस्तक पे चूड़ा और अंचल पकड़ लिया। कहिए कौन है? तो देखा क्या, अरे मेरा लाला है, कैसे आ गया यहाँ? पर झट उसको गोदी में रखा, अंचल से ढक दिया और उसको अपना स्तन दे दिया और कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर के तृप्ति के सहित अपने मैया का स्तन पान करने लगे। सोचिए एक तरफ में यशोदा के स्तन में इतना दूध है, शास्त्रों में कहा गया है क्षीर समुद्र आज इत्यादि विश्व ब्रह्मांड में जितना दूध का जो दूध है वो यशोदा मैया के दूध का एक टुकड़ा अंश है, इतना उसमें दूध है। और दूसरी तरफ में कृष्ण का पेट कैसा, अखिल विश्व ब्रह्मांड जिनके पेट में समा सकता है वो दूध पी रहे हैं, भोग भी बहुत काफी है। यशोदा का दूध न समाप्त होने वाली है और न इनकी भूख समाप्त होने वाली है, पेट इनका कितना लंबोदर से भी लंबोदर। इसलिए होड़ लग गई और पासी में दूध एक चूल्हे पर रखा है, वो उफन रहा है। यशोदा जी ने देखा ये तो दूध उफन रहा है और कृष्ण बड़े प्रीति के साथ में ललक ललक करके पी रहे हैं दूध। देखा ये दूध तो गिर जाएगा सब, बस कृष्ण को कहा जाए बैठ जरा ठहरो, इसलिए वो हटाना चाहती हैं। और जब देखा जैसे मैया कहीं जाना चाहती है, मेरे अभी पेट भरा नहीं, तो जानबूझ करके अपने हाथों से पकड़ लिया। छोटा सा बच्चा जैसे बंदरिया होती है और बंदर छोटा सा उसका बच्चा चारों तरफ से पकड़ लेता है, वो चाहे यहां से वहां तक कूद जाए इधर उधर पेड़ों पर, किंतु वो बच्चा नहीं इधर से उधर से, वो एकदम पकड़े हुए। कृष्ण ने ऐसे पकड़ लिया, मुख से जोर से और पकड़ लिया, पैरों को लगा करके पेट को पकड़ने की चेष्टा की। यशोदा मैया ने एक सेकंड नहीं लगाया, बैठ जाए एक हाथ से उठा करके बैठा दिया। कृष्ण का सारा जितना ऐश्वर्य और बल सब धरा रह गया। प्रेम एक ऐसी चीज है ना, प्रेम एक ऐसी चीज है जो विश्व का सारा बल उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो यशोदा का ऐसा वात्सल्य प्रेम था, ये हों विश्व ब्रह्मांड के सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हों ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण ये हों, राम निसिंह कल की बामन के भी मूल अंशी क्यों न हों, किंतु प्रेम के सामने नीचे झुक जाना पड़ता है। इनका काम कोई शक्ति काम नहीं की बैठा। कृष्ण को कुछ क्रोध हुआ, अधर कांपने लगे, होश कांपने लग गया, आंखें कुछ लाल लाल सी हो गई, इधर उधर देखने लगा क्या करूं। उठ करके खड़ा हुआ और देखा ये मक्खन जो कर रही थी ये दही को पलट दूं, तो उसने चेष्टा की तो उसे हिला नहीं। विश्व ब्रह्मांड को ही गोवर्धन को भी धारण अभी एक दो वर्ष के बाद ही करने वाले हैं, किंतु वो हड़िया नहीं इधर उधर। पासी में एक पत्थर था, भारतवर्ष में उसको लोढ़ा कहते हैं, सिल लोढ़ा, सिल को छोटा सा पत्थर लिया और उसके नीचे में मारा, ऊपर में नहीं मारा, इतनी अकल हो गई है अब। ऊपर में मारने से ये मोटा है, ये टूटेगा नहीं, या टूटेगा भी तो उस पूरा नहीं गिरेगा, इसलिए एकदम पेंदी में उसने किया जहां पर पतला भी होता है, बस मारा उसमें छोटा सा गोल छेद हो गया और वो गिरने लगा। वो ये देखने लगा वाह बहुत सुंदर तो निकल रहा है। थोड़ी देर के बाद में जब पूरा निकल आया, अरे मैया तो आएगी, अब डर हो गया और झट उस दही के ऊपर से चलते हुए एक किसी घर में घुस गया और वहां पर देखते ही छीके पर मक्खन लटकाया हुआ है। बस लोभ हो गया, एक उखल पड़ी थी उसी के ऊपर में चढ़ करके वो मक्खन है। इधर में यशोदा मैया लौट करके आई, कहां गया कहां गया? कृष्ण तो छिप करके गए किंतु मैया ने देखा। चोर जितना ही उपाय करे किंतु कोई ना कोई सुराग रह जाएगी जरूर, कोई ना कोई चिन्ह जरूर छोड़ करके जाना पड़े जिसको पुलिस आकर के देखेगी और उसको पकड़ेगी। उन्होंने देखा सहज रूप में जैसे ये इसके तो पैरों के छाप है और इसी घर में गया है। वो उसने झांक करके देखा जैसे ऊपर में चढ़ करके और मक्खन लेकर के खा रहा है, और इतने में उसके बंदर भी आ गए बहुत से, और काकभूषुंडी के बेटे नाती ये सब माने कौए भी आ गए। बड़े प्रेम के साथ में उनके हाथों से भी छीन करके बंदर खा रहे हैं और जो कुछ इधर उधर गिर पड़ता है कौए टप टप ले रहे हैं। कृष्ण ने सोचा कि पूर्व जन्म में हमारे जन्म राम था।